ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। पतितस्य पदाक्रम्य मृगेन्द्रैव लीलया दन्तमुत्पाट्यते नैभां हस्तिपांश्चाहनधरिः मृतकं द्वीपमुत्सृज्य दन्तपाणिः समाविशत् अंशन्यस्तविषाणोश्रीं मद्बिन्दुभिरङ्कितः विरूढस्वेदकणिका बदनाम्बुर्हो बभौ वृतो गोपैः कतिपयैः बलदेव जनार्दनौ रङ्गम् विविशतु राजान् गजदन्तवरायुधौ मल्लानामशनिर्णानरवर स्त्रीणां स्मर मूर्तिमान्। गोपानां सजनो सतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रः शिशुः। मृत्युर्भोजपतेर्विराड विदुषां तत्त्वं परं योगिनां। वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रङ्गं गतः साग्रजः। हतं कुबलया पीडां दृष्ट्वा तावपि दुर्जयौ कंसो मनस्व्यपितदा दृशमुद्विद्विजे नृप। तौरे जतुरङ्गगतौ महाभुजौ विचित्रवेषाभरणस्रगम्बरौ जथा नटौ उत्तमवेषधारिणौ मनः क्षिपन्तौ प्रभया निरीक्षताम्। निरीक्षतौ उत्तम पुरुषौ जना मञ्च स्थिता नागर राष्ट्र का नृप। प्रहर्ष वेगोत्कलिते क्षणाननः पपूर्ण तृप्ता नयन हिस्तदाननम् पिबन्त इव चक्षुर्भ्याम् लिहन्त इव जिह्वया जिघ्रन्त इव नासाभ्याम् श्लिष्यन्त इव बाहुभिः। एक साथ गाइए सब लोग मल्ला नाम सुने, साथ में गाइए। मल्ला नाम शनि नरवर स्त्री राम स्मर मूर्तिमान गोपा नाम स्वजन सतां चिति भुजा शास्ता स्वपितो शिशु यतो भोजपते विराद विदुषा तत्त्वं परं योगिनां वृष्णे। हरि बोल। दूसरे जो संस्कृत पढ़ते हैं अच्छा से उनको माइक देना चाहिए, मीटर बदल रहा है। वृष्णी नाम पर देवते दिदितो रंगं गतः सागरं। इसी को चार बार पांच बार पढ़ना है, ठीक है, साथ में चलो पढ़ना। मल्ला नाम शनिर्नीणां नरवरः स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजन सतां चितिभुजां शास्ता स्वपित्रः शिशुः मृत्योर्भोजपतेर्विराद विदुषा तत्त्वं परं योगिना वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगं गतः सागरः। श्रील सुखदेव गोस्वामी को इतना आनंद आया कि वे बृहत छंद में इसको गाने लगे। दस प्रकार के लोग सभा में बैठे हैं, दस विचार वाले, उनके अभिप्राय के अनुसार ही कृष्ण बलराम उनको दिखाई पड़ रहे हैं। तो मल्लों को, पहलवानों को वज्र के समान कठोर शरीर वाले दिखाई दिए, जबकि अत्यंत सुकुमार हैं कृष्ण बलराम। और सामान्य मनुष्यों को जो द्वेषी नहीं थे, मथुरावासी और जनपद के लोग, भक्त भी नहीं थे लेकिन दुष्ट भी नहीं थे, तो उनको बड़ा अद्भुत लोकोत्तर रूप माधुरी से झुकते दोनों भाई लग रहे थे। और स्त्रियों को, ज्योति स्त्रियों को, जिसमें मातृभाव वाली स्त्रियों को छोड़ करके ज्योति स्त्रियों को, दोनों भाई ऐसे लग रहे थे जैसे मूर्तिमान कामदेव आ गया हो। स्मरो मूर्तिमान गोपा नाम स्वजनों, और जो गोप वहां बैठे थे ब्रज से आए हुए भगवान के सखा आदि, वे लोग तो देख रहे थे हमारा सखा आया और अजब नाटक करके आ रहा है, दांत टांग करके और खून लगाया हुआ है हुआ, तो सब हंसे ठठा करके, उनको बड़ा हास्य रस मिला। कोई किसी का साथी अकस्मात बहुरूपिया बन करके आ रहे तो हंसेगा कि नहीं, ये कौन डिजाइन बना लिया, अब तक बांसुरी बजाता था और अब हार टांग करके चला है, हड्डी टांग करके चला है, तो उनको बड़ा हंसी आई। और असतान छिते भुजाम, जो असुर स्वभाव के राजा थे, दुष्ट राजा, वे देखे कि हमारा काल आ गया, मतलब हमको दंड देने वाला। कृष्ण बलराम बच्चे हैं, वास्तविक स्थिति है, लेकिन दुष्ट राजाओं को ऐसा चला कि हमारे लिए दंडधर काल है, दंड देने दोनों। और स्वपित्र शिशु और श्री नंद बाबा को और वसुदेव जी को और भी जितने भी कृष्ण के प्रति वात्सल्य रखते थे, उनको ऐसा दिखाई पड़ा कि हमारा बच्चा आ गया, बिल्कुल शिशु जैसे दिखाई दे रहा है। उस सभा में प्रवेश किए तो शिशु जैसे दिखाई पड़े, और भोजपति को क्या लगा कि साक्षात हमारा मृत्यु आ गया। भोजपतेर मृत्यु भोजपते, और अविदुषान जो कंस के पुरोहित आदि थर्ड क्लास के लोग बैठे थे उस सभा में, जो अज्ञ थे, भगवान के शरीर के स्वभाव को नहीं जानते थे, तो देखे कि ये बिल्कुल बेढंगा प्राकृत लड़के घूम रहे हैं सभा में। इनको कोई गेट पर नहीं रोका, उनके मन में आ रहा घृणा हो गई, न नहाए हैं न कुछ भी, खून लगा है, हाथी का मद लगा है, पसीना लगा है। इस सभा में इनको विचार नहीं है कैसे बैठना चाहिए, कैसे आना चाहिए, हड्डी टांग करके आ रहे हैं। तो अब विदुषण मूर्खों को तो बिल्कुल विराट लग, विराट का अर्थ है विगत रात, अच्छा नहीं लगा। उनको खराब लगा। और जोगीनाम श्री शनकादिक जैसे जो जोगी हैं उस सभा में जो बैठे थे, सुम शनकादि नहीं बैठे थे लेकिन जो भी जोगी हैं, उनको तो ऐसा ही साक्षात दिखाई दिया कि परब्रह्म हम साक्षात आ गए। तत्त्वम परम, परम तत्व, और वृषणी नाम पर देवता। वहां पर उद्धव जी श्री अक्रूर जी जैसे, अक्रूर जी तो वहां नहीं थे लेकिन और जो जादव थे भगवान के भक्त, उनको ऐसा लगा हमारे परम इष्ट देव आ गए। उनकी श्रद्धा, उनकी दास्ता भक्ति बढ़ गई। तो इस तरह से साग्रज अपने बड़े भाई श्री बलराम जी के साथ रंग भूमि में प्रवेश करने पर वहां उस सभा में श्री कृष्ण 10 प्रकार के अभिप्राय के लोगों को 10 तरह से दिखाई दिए। कृष्ण बलराम एक ही हैं, श्री कृष्ण एक ही हैं, लेकिन 10 तरह से दिखाई दिए। श्री सुखदेव गोस्वामी इस लीला का वर्णन बड़े तन्मयता से कर रहे हैं और गाने लगे अकस्मात। मल्ला नाम शनिर्नृणाम नरवर स्त्रीणाम स्मर मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सतां क्षिति भोजान शास्ता स्वपित्र शिशु मृत्योर्भोजपते विराग विदुषां तत्त्वं परं योगिना वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगं गतः साग्रजः। कुबलाय पीठ जब गिर गया, भगवान ने अपने हाथ से, एक हाथ से वही बाएं हाथ से ही सूंड पकड़ करके उसको झटक कर गिरा दिया। और जब पतितम, जब पतित हो गया तो तम पदा आक्रम्य एक पैर से उसके मस्तक को दबा करके और उसका दांत उखाड़ लिया, एक पैर से दबा करके और दांत उखाड़ लिया। अगर पैर से नहीं दबाते तो दांत उखाड़ने पर मस्तक भी साथ में आ जाता है, उखड़ता नहीं, इसलिए उसको पैर से दबाए उसको उखाड़ने के लिए। किस तरह से, जैसे मृगेंद्र पशुराज सिंह, सिंह जब हाथी को मारता है अपने पैर से दबा करके और पहले उसके दांत के मूल में जहां जमा होता है दांत उसको काटता है, काट करके हल्का करके श्रद्धार्थ को उखाड़ लेते हैं, इसी उनका स्वभाव है। इसी तरह से श्री कृष्ण मृगेंद्र इव सिंह की तरह लीलया लीला पूर्वक खेल खेल में उसके मस्तक को पैर से दबा करके और दंतम उत्पाट्य दांत उखाड़ लिए, और दांत उखाड़ करके तेना उसी दांत से इभम हाथी को पीटे, कई बार नहीं पीटे, एक दो बार पीटे खत्म हो गया। भगवान में इतना बल है, मारे एक दो बार बस मर गया हाथी। और हाथी को मारने के इसके बाद जितने महावत थे सब पर एक एक दांत मारे, सब वहीं पर। जो महावत हटाया नहीं था हाथी को गेट से द्वार से, और उल्टे ललकारा था, और भी महावत मिल करके कुबले पीड़ को ललकारे थे। तो भगवान ने कुबलया पीड़ को तो मारा ही, हाथी को मारा, और जितने महावत थे हाथी को हांकने वाले सबको मार दिया। हरि बोल। ये तीसरे प्रकार के लोग उस सभा में नहीं थे जो सो रहे थे, 11वें प्रकार के जो लोग नहीं थे, केवल 10 प्रकार के लोग थे, है ना सीतापति? 11वें प्रकार में आप लोग होने की कोशिश मत कीजिए, कम से कम दोनों भाइयों को देखते रहिए, ये प्रवेश कर। ये तो मुद्रा ब्रज की है, जो मथुरा में दंत पाणी होकर प्रवेश कर रहे हैं। अब श्रील सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, हरि ही श्री कृष्ण दंत पाणी हो गए मथुरा में कुबलया पीड़ का वध करने के बाद, दंत पाणी। ब्रज में वेणु पाणी रहते हैं, हाथ में बांसुरी रहते हैं। अब दोनों भाई ले लिए दांत हाथ में, पृथ्वी का भार दूर करेंगे, खाली हाथ कैसे मारेंगे सबको? तो दंत पाणी हो गए। अंश न्यस्त विषाणो, बल हाथ में दांत लिए थे दंत पाणी, इसके बाद अंश न्यस्त कंधे पर ले लिए, बड़ा बड़ा दांत था। ऐसे भगवान के लिए कोई मुश्किल नहीं है, जो गोवर्धन पहाड़ उठा सकता है वो हाथी दांत को आसानी से टांग सकता है कि नहीं? लेकिन फिर भी लोक रीति से नरलीला दिखा रहे हैं कि हाथी दांत बड़ा है, तो उसको अंश न्यस्त अपने कंधे पर ले लिया ऐसे। और श्री बलराम जी भी लिए। आगे आगे इसका वर्णन है कि दोनों भाई दंत पाणी थे, तो श्री बलराम जी भी एक दूसरा दांत उखाड़े और वे भी हाथी दांत को अपने कंधे पर ले लिए। अद्भुत मुद्रा है भगवान की। अंश न्यस्त विषाण, अंश अंशे वाम स्कंधे न्यस्तम निहितम विषाणम गजदंतम जेन स, एक छवि है। कंधे पर हाथी दांत लिए और अश्रिग मद बिंदु भी, अश्रिज रक्तस्य मदस्य मदोदकस्य च बिंदु भी। और श्री कृष्ण और कैसे अलंकृत थे, शरीर पर खून के छींटे पड़े हुए थे, हाथी को मारने में दांत उखाड़ने में खून के छींटे पड़े थे, बिंदु भी और मद बिंदु भी। हाथी के गाल से मद चूता है, बहुत सुगंधित होता है, तो उसके भी छींटे पड़े थे। तो श्री कृष्ण का इस तरह से श्रृंगार है। विरूढ़ स्वेद कणिका बदनाम गृह, उनका सारा शरीर तो अंकित है दो चीज से, हाथी के रक्त से, खून से, और हाथी के मद से, और मुख अलंकृत है विशेष रूप से पसीने से। श्वेत बिंदु भी विरूढ़ श्वेत कणिका, विरूढ़ का अर्थ है विशेष रूप से रूढ़ा, जो आविर्भूत हो गए हाथी को मारने में, भागने में श्री कृष्ण को परिश्रम हुआ है, ये भाव है। तो पसीने पर, सांवले मुख पर श्वेत बिंदु उभर गए हैं, ऐसा लगता है कि जैसे श्याम सांवले पंकज कोष पर ओस पड़ा हुआ है, जल बिंदुएं उभरी हुई। तीन चीजें विशेष रूप से दिखाई दे रहा है, खून के बूंद, मद के बूंद और पसीने की बूंद, परिश्रम से जो जल उत्पन्न हुआ है वे। इससे श्रीकृष्ण बहुत सुंदर लग रहे हैं। बदनाम गुरु बभव, श्रीकृष्ण का बदन कमल, मुख कमल बहुत सुंदर लग रहा है। बभव, बभव का अर्थ है सुशोभा, बहुत सुंदर लग रहे हैं। श्रील सुखदेव गोस्वामी भगवान के इस लीला को, इस छवि को उस सभा में, विशेषकर परीक्षित महाराज के हृदय में बिल्कुल उभार रहे हैं अपने शब्दों द्वारा। इस तरह से श्री कृष्ण बहुत अच्छा लग रहा है। विरुद्ध श्वेत कंता बदनाम गुरुह विशेषेण विरुद्ध विचित्रतया वा रूढ़ा प्रादुर्भूता इति श्वेत कणिका नाम अपि श्रीमुख भूषणत। भगवान के मुख पर जो परिश्रम के की बिंदुएं उभरी हुई हैं, पसीना उभरा हुआ है, वो भी एक विभूषण है। भगवान की शोभा इससे बढ़ती है। कुरुक्षेत्र में अर्जुन को विजयी बनाने के लिए, अर्जुन का रथ हाँकने में उनको जो परिश्रम पड़ा है, उस परिश्रम की पसीनों की बिंदुओं से उनका मुख कमल बहुत सुंदर लग रहा है। भीष्म पितामह जी वर्णन किए हैं अपने मरते समय भगवान की इस छवि का, इतना परिश्रम कर रहे हैं श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में कि अपना पसीना पोंछने का उनको फुर्सत नहीं है, समय नहीं है। दाहिने हाथ में चाबुक है और बाएं हाथ में घोड़ों की लगाम, और लगे हैं रथ को हाँकने में इधर उधर, कैसे कैसे अपना पसीना पोंछे। तो उनकी अलकें मुख के इधर उधर लटक रही थी, तो वे कभी कभी आ जाती थी मुख के सामने, तो उसी से पसीना थोड़ा थोड़ा पोंछा जा रहा। भगवान अपने भक्त को विजयी बनाने के लिए इस तरह से परिश्रम कर रहे हैं। तो उस परिश्रम की बूंदों से, श्वेत बिंदुओं से विभूषित भगवान का मुख और अधिक सुंदर लगता है, और बहुत सुंदर इसलिए और अधिक अच्छा लग रहा था कि ऐसे भगवान भक्त की रक्षा में, भक्त को विजय दिलाने के लिए कितना कार्यरत है। बैठे हुए भगवान अच्छा नहीं लगते हैं, केवल सिंहासन पर बैठे रहें और ये मुद्रा, ये अच्छा नहीं लगता है। काम करते हैं तब तो अच्छा लगता है, गाय चराने जाते हैं या घोड़ा हाँकते हैं, रथ हाँकते हैं या पहाड़ उठाते हैं, कुछ काम करते रहते हैं तब तो अच्छा लगता है। लेकिन जिनकी चेतना बिल्कुल मंद है उनको निराकार अच्छा लगता है, कोई काम नहीं, धंधा नहीं, कुछ नहीं, कोई रूप नहीं, ऐसा ईश्वर किस काम का है। ऐसा ईश्वर चाहिए जो एक्टिव है, लगा हुआ है काम, भक्त के साथ संबंध है। ये भगवान भी ऐसे ही चुपचाप रथ पर बैठे रहते तो अर्जुन क्या जीते होते कुछ भी विजय हासिल नहीं हुई होती। ये है भगवान का वास्तविक स्वरूप। अपने भक्तों के लिए वे परिश्रमशील हैं, अपने भक्तों को सुख देने के लिए वे अपना श्रृंगार करते हैं, अपने को सजाते हैं, और कभी कभी कृष्ण चैलेंज करते कौन ऐसा योगी है, कौन ऐसा आत्मा राम है जो मेरे रूप पर मोहित नहीं हो सकता है, जरा देखूं तो आत्मा राम गणाकर्षी। किसी किसी ने भगवान से कह दिया कि इस सुखदेव गोस्वामी किसी भी रूप पर आसक्त नहीं है, कोई भी देवी हो या मनुष्य लोक में कोई स्त्री हो या कुछ भी हो, किसी के रूप पर वो कभी सोचते नहीं। अच्छा, तो उसको मेरी वृंदावन की लीला सुनने का मौका दिया जाए, बरहा पीडम नटवर बपू, तब देखूंगा कि उसकी आत्मा रामता कहां रहती है। बस दो श्लोक सुखदेव गोस्वामी ने सुना भगवान की कृपा का वर्णन और सौंदर्य का, अपने आप अपने पिता के पास लौट आए और जो ब्रह्म चिंतन कर रहे थे उसको तिलांजलि दे दिया उसी समय। अब ये नहीं, अब बस कृष्ण का कीर्तन करना है, उनके गुणों का वर्णन करना है। ऐसा वर्णन कि 7 दिन 7 रात तक लगातार यही गुण वर्णन चल रहा है, ये है भगवान की विशेषता। और भगवान कभी कभी यही सोचे कि कौन ऐसी नारी है जो मेरे रूप पर आकर्षित नहीं हो सकते हैं, जरा देखूं तो चाहे सबको तो मोहित किए हैं, वैकुंठ में रहने वाली भगवान नारायण की वक्षो विलासिनी लक्ष्मी को भी आकर्षित कर लिए। क्योंकि नारायण स्वयं ही है, परंतु और लक्ष्मी जी तप करने लगी कृष्ण को अपने प्रियतम के रूप में पाने के लिए। तो ये है भगवान का महत्व, भगवान का वास्तव में स्वरूप। तो भगवान पूर्ण एक्टिव है। श्रील प्रभुपाद जी प्रवचन में एक जगह कहते हैं कि श्री भगवान स्वयं परिश्रम करते हैं और भक्तों को भी चाहते हैं कि परिश्रम करें। बैठे रहने से शरीर भी खराब हो जाता है ना, तो लोग परिश्रम न करके वॉकिंग करते हैं जिसमें कोई फायदा, मतलब सिर्फ बेकार चलना। कुछ ऐसा समय होना चाहिए कि काम हो, फायदा हो और शरीर को भी फायदा हो जाए। तो बैठे रहने वाले लोगों को बाद में और वॉकिंग करो, घूमो, केवल लोग चर्चा करते हुए और हाथ में बेंट लिए हुए लोग घूमते रहो, और बनावटी अब हंसी हंसाया जाता है, हंसी। कहीं कहीं पार्क में मैं देखता हूं कीर्तन में अगर नाचा जाए तो ये सब की कोई जरूरत नहीं है, परफेक्ट है नृत्य, है ना, परफेक्ट व्यायाम है। तो श्री भगवान ने इस तरह से कुबले पीढ़ी का वध किए, वध करने में बहुत परिश्रम किए हैं, फेंटा खोस करके परिकर बांधे हैं और इतना परिश्रम किए हैं कि मुख पर, मुख कमल पर पसीने की बूंदे उभरी हुई है। उसी श्रील सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है, बभव सुशोभ, और हाथी के शरीर से जो रक्त निकला है, रक्त भी लगा है, मद भी लगा है, इस तरह से सुंदर लग रहे हैं। और कंस उस रंग भूमि में प्रवेश किए, हाथी का वध करने के बाद उनकी जो शोभा हुई उसका वर्णन करके श्री सुखदेव गोस्वामी अब रंगशाला में प्रवेश का वर्णन कर रहे हैं, किस तरह से दोनों भाई प्रवेश कर रहे हैं। वृतौ गोपैः कतिपयैः बलदेव जनार्दनौ रंगम विविशतु राजन गजदंत वरायुधौ। हे महाराज परीक्षित, हे राजन, राम जनार्दनौ कतिपयैः गोपैः वृतौ, गोपैः वृतौ, श्री कृष्ण और श्री बलराम कुछ ही गोपों से घिरे हुए, कतिपय बहुत कम सखा थे, बाकी सब तो नंद बाबा के साथ चले गए थे, कृष्ण ने स्वयं ही भेजा था। इसीलिए श्रील सुखदेव गोस्वामी करे कति पयई गोप, कुछ ही गोप। कुछ ही का मतलब क्या हुआ, अब ज्यादा से ज्यादा 8-10 गोप थे बस। हाँ, 8 प्रमुख सख तो उनसे घिरे हुए थे। गजदंत बरायुधौ, गजदंत हाथी का दांत ही जिनके लिए श्रेष्ठ आयुध था, श्रेष्ठ आयुध था मतलब ये फर्स्ट क्लास का हथियार। बरायुधौ कुबलयपीड़ के दोनों दांत दोनों भाइयों के लिए एक एक आयुध का काम कर रहे थे, वे दिखा रहे थे श्री कृष्ण जब चले गोपों के साथ दोनों भाई, तो हाथी दांत को ऐसे लेकर चल रहे थे एक हथियार के रूप में, एक अस्त्र के रूप में लेकर चल रहे थे। इसके लिए नहीं कि बहुत धन मिला है अब इसका कुछ बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये विचार नहीं आ रहा। खतरनाक जगह पर प्रवेश कर रहे हैं इसलिए लाठी ले लिए, हाथी दांत ले लिए। तो हाथी दांत लिए हुए कृष्ण बलराम की छवि को देख रहे सुखदेव गोस्वामी और श्रोताओं के मन में उभार रहे। गजदंत बरायुधौ, गजस्य दंतौ एव तन्मारण साधन तया कंसादौ भय दत्वेन अनुसंगृहित गृहीते वरे श्रेष्ठे आयुधे जयो। तो ये क्यों लिए, सभा में जा रहे हैं तो हाथी दांत लेकर के क्यों गए? ठीक है, हाथी मर गया या क्रोध में दांत भी उखाड़ लिए तो फेंक फांक कर जाना चाहिए था, नहा लेना चाहिए था, स्नान करके जाना चाहिए था सभा में, जो जितने लोग गए थे तो सब स्नान करके और अच्छा अच्छा कपड़ा पहन करके गए थे, और ये दोनों भाई गए तो हाथी दांत लेकर के गए। भगवान लोकोत्तर लीला करते हैं, लोगों से बिल्कुल भिन्न है, तो ये सोच करके गए कि अब हाथी दांत लेकर के जाएंगे तो प्रचार होगा कि ये कुबलयपीड़ हाथी को मार करके आए, अपने आप सब जगह प्रचार होगा, तो कंस डरेगा। भगवान ने ये सोचा जब हाथी दांत दिखाएंगे ले जाकर के तो कंस डरेगा और सब डरेंगे, मेरा प्रचार होगा इस तरह से, इसलिए हाथी दांत लेकर के गए। श्रीपद सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कंसादौ भय दत्वेन, कंस आदि को भय देने में सहायक होगा। भय हाथी दांत देख करके ही याद आ जाएगा कि 10,000 हाथियों का बल रखने वाला कुबलयपीड़ इनके द्वारा मारा गया और बिना कोई हथियार लिए मारा गया, तो भय उत्पन्न होगा और भय उत्पन्न होने पर हो सकता है कि कौन सरेंडर कर दे, तो क्यों खून खराबी होगी। भगवान सबके हितैषी हैं, वे सोचे कि अभी भी शांति हो सकती है, अभी भी एक दंगल संगल नहीं होगा, सब लोग जिएंगे खाएंगे अच्छा से रहेंगे, तो इससे भय हो जाए। बलदेव जनार्दन, श्री बलराम जी को सुखदेव गोस्वामी बलदेव कह रहे हैं और श्री कृष्ण को जनार्दन। जनार्दन अर्दन का दो अर्थ होता है, अर्दन का अर्थ होता है बिल्कुल धूल में मिला देने वाले, तो वे दुष्ट जनार्दन है, दुष्ट जनों को मारते हैं। सावधानी से समझाने, दुष्ट जनों को मारते हैं और भक्त जनों का पालन करते हैं। जनार्दन के दोनों अर्थ हैं, भक्त जन के अर्दन हैं और दुष्ट जन के भी अर्दन। यहां पर भक्त जनों के अर्दन का अर्थ ये नहीं है जिस सभा में प्रवेश कर रहे हैं उस सभा ही लगी हुई थी कृष्ण बलराम को मारने के लिए, मतलब राजा के द्वारा यही प्लान था, इसलिए दुष्ट जनार्दन, दुष्टों का वध करना है, ये मन में रखकर कृष्ण प्रवेश कर रहे हैं। और बलराम जी का नाम बलदेव है, इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कुछ समय उन्होंने देखा कि अब थोड़ा बल की जरूरत है, यहां थोड़ा प्रकट करना चाहिए, केवल गाय नहीं चराना है, अब यहां पहलवानी करनी है और बहुत से लोगों को, पहलवानों को मारना है, तो उन्होंने बल को प्रकट किया। इसीलिए श्री सुखदेव गोस्वामी बलावीर भाव के कारण कहते हैं बलदेव, जो बल से दिव्यति, बल से सुशोभित होते हैं या क्रीडति, उनको बलदेव कहते हैं। तो बल शब्द लगा करके ही कहने क्या जरूरत थी, और भी कह सकते थे राम शंकर कुछ भी, यहां बल आविष्कृत किए थे। दोनों भाई जब चल रहे थे तो चूंकि पहलवानी करना है तो बड़े शान के साथ बड़े पहलवान चल रहे थे, तो परम सुंदर थे, लेकिन अपना बल प्रकट करते हैं, बल्कि बीच बीच में कहीं उठ के बैठ के भी करते जाते थे, इस तरह से दिखा रहे दोनों भाई। और इस रूप में रंगम बीबी सतु रंगशाला में प्रवेश किए, हाथी को मार करके रंगशाला में प्रवेश किए। तो वहां पर किनको किस तरह से श्री कृष्ण लग रहे थे, साग्रज अपने बड़े भाई बलराम जी के साथ कृष्ण कैसे लगे सभासदों को, किसको कैसे लगे, सबको एक समान नहीं लगे, अपना अपना भाव होता है, अपनी अपनी मानसिक स्थिति होती है, चेतना होती है, उसके अनुसार कृष्ण दिखाई दिए। यह एक बहुत अद्भुत बात है और यह वास्तव में केवल भगवान के लिए ही संभव है। वे हैं एक ही कृष्ण बलराम, जैसे स्वरूप उनका है तो हाथी दांत लिए हैं, किशोर अवस्था के हैं, ए हरिबोल वहां बच्चे खेल रहे हैं, बलराम देव उनको मना कीजिए, मंदिर के उधर खेल रहे हैं, उनको कोई मना करे, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग आ रहा है। तो आपने सुना था कि उस सभा में मल्ल पहुंचे थे, चारूण, मुष्टिक, कूट, सल और तोसल, पांच प्रमुख पहलवान थे और उनके चेला आदि तो बहुत से आदमी पहलवान थे, मुख्य पहलवान। तो सबसे पहले पहलवानों की दृष्टि पड़ी, पहलवान नीचे थे अखाड़ा के पास और जो रंग द्वार था वो नीचे से पहले आ रहा था, तो और उसके ऊपर द्वार के ऊपर फिर गैलरी और मंच बने हुए थे, चारों तरफ गोलाकार मंच बना हुआ था, लेकिन प्रवेश नीचे से था, इसलिए पहलवानों की दृष्टि पहले पड़ी। अतः श्री सुखदेव गोस्वामी मल्ला नाम असली से चालू कर रहे हैं, पहलवानों को, मल्लों को श्री कृष्ण कैसे लगे बलराम जी के साथ, वो देखे कि वज्र के समान कठोर और फुर्तीले कृष्ण आ गए, कृष्ण बलराम दोनों ऐसे वज्र के समान, इनको देख करके इन पहलवानों में क्रोध उत्पन्न हुआ और लड़ने का उत्साह हुआ, उत्साह बढ़ गया। इसको सनातन गोस्वामी जी कहते हैं क्रोध रति, क्रोध से वे कृष्ण को देख रहे थे, रक्त हो गए कृष्ण में, क्रोध ही अस्थाई भाव है, रौद्र रस, रौद्र रस उत्पन्न हुआ, मतलब बहुत कठिन शरीर वाले, और कठिन कठोर शरीर वाले और पर्वत के समान बड़े बड़े शरीर वाले कृष्ण बलराम दिखाई दे। अरे वैसे नहीं है, स्वरूप कृष्ण का है, श्री बलराम का है कि वे गुचारक हैं, गोप हैं, परम सुकुमार, फूल से भी सुकुमार शरीर है, लेकिन इनका भाव ये था, ये जो अब तक कथा सुने थे कृष्ण के विषय में, बलराम के विषय में, ये सुने थे बार बार, उसने अघासुर को मारा, उसने पर्वत उठाया, वो आग पी गया है, तो सुनते सुनते उनके प्रति यही धारणा बनी हुई थी, कृष्ण बहुत भारी पहलवान है और बहुत बलवान है, शुरू से ही यही सुने थे, यही भावना पोषित होती है। और कंस ने इनको नियुक्त किया था कि तुमको दंगल करना है, कृष्ण बलराम को मारना है, तो इनका अभिप्राय, इनका मन ऐसा ही बना था। सभा में प्रवेश करने पर कृष्ण को श्री बलराम जी के साथ देखे कि ये दो पर्वत के समान बड़े शरीर वाले और वज्र के समान कठिन शरीर वाले, जो वज्र पर्वत को भी विदीर्ण कर देता, ऐसा कठोर शरीर वाले, इनमें देह करके क्रोध हुआ। इन्हीं दोनों ने मथुरा से गए हुए कितने लोगों को मार गिराया है, अभी अभी धनुष तोड़ा है, जो कितने सैनिकों का वध किया, तो इनमें क्रोध उत्पन्न हुआ है और दंगल करने का उत्साह सौ गुना बढ़ गया। उत्साह रति, एक टीकाकार तो कहते हैं उत्साह रति उत्पन्न हुई, इन्हीं के साथ दंगल करना है, एक कंस का आयोजन। तो पहलवानों में भय उत्पन्न नहीं हुआ, क्रोध उत्पन्न हुआ और उत्साह उत्पन्न हुआ उनसे लड़ने का। जितने पहलवान थे, केवल चारुण मुष्टिक आदि ही नहीं, और जितने थे सबने यही है कि हम भी देखेंगे, लड़ेंगे, भगवान से लड़ने की इच्छा उत्पन्न हो गई। कृष्ण इस तरह से दिखाई उनको दिए, उनके अभिप्राय के अनुसार, ऐसा नहीं था कि वे उसको स्वयं अपने से इस तरह से देख लिए, ऐसा अभिप्राय था, इसलिए कृष्ण उस अभिप्राय में वैसे ही स्फुरित हुए। राधा रानी के सामने श्री कृष्ण पूर्णतम सुंदर रहते हैं, क्योंकि वही उनका स्वरूप है, पर राधा रानी का महाभाव है, तो महाभाव के सामने रसराज अपने पूर्ण स्थिति में होते हैं। वही कोई साधारण भक्त देखता है, भाव रहता है, तो उसको उसके भाव के अनुसार ही कृष्ण दिखाई देते हैं। तो पहलवानों को पर्वतोपम कठिन शरीर वाले दिखाई दिए, और जुनून का चित जलने लगा देख करके, उन दोनों को जलने लगा, जो चित जलता है तो इसको क्रोध कहते हैं, सहन नहीं होना, लड़ने के लिए तैयार। बल्कि उनको जब देखे तो, और सभासद बैठे थे तो बैठे थे, ये लोग उठ करके और ताल ठोकना चालू किए, क्योंकि वो ऐसे ही दिखाई दे रहे थे, अपना 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 बाहु स्फोट करने लगे, देखते उत्साह उत्पन्न हो। मल्ला नाम असनेर और निर्णाम, और जो निर्णाम साधारण मनुष्य थे मथुरा के, सामान्य पब्लिक, उनको ऐसा दिखाई दिया कि लोकोत्तर मनुष्य, अद्भुत तेज, अद्भुत प्रभाव और अद्भुत सौंदर्य है इन दोनों लड़कों का, उनमें विस्मय रति उत्पन्न हुई, विस्मय हुआ, आश्चर्य हुआ, ऐसा तो हमने कभी सुना नहीं था, देखने की बात तो दूर है, इतना प्रभावशाली मनुष्य कोई हो सकता है? आपस में लोग बात करने लगे, अरे तू अद्भुत है, कहां के हैं, कौन है, आपस में बात करने लगे, विस्मय हो गया कृष्ण को देखकर। तो वास्तव में ये कृष्ण का स्वरूप है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इन 10 प्रकार के लोगों में कहते हैं कि 4 जो थे वे रस का आस्वादन नहीं कर रहे थे, 6 रस का वास्तविक आस्वादन कर रहे थे। श्रीपद श्रीधर स्वामी जी कहते हैं कि यहां सभी रस उत्पन्न हुए, तो ये अगर माना जाए वो भी एक रस है वास्तव में, जैसे पहलवानों का, और क्रोध रति है और रौद्र एक रस है, क्या सचमुच के रस का आस्वादन कर रहे थे? नहीं, रसाभास था, इसमें कोई रस का आस्वादन नहीं था, लेकिन फिर भी क्रोध के कारण ही वे कृष्ण में लगे। वो इस सभा में सोने वाले से कितना अच्छा थे, क्रोध से देख रहे हैं, उत्साह से देख रहे हैं, है ना? अब जरा विचार कीजिए, वो इतना लगे हुए थे, देख रहे थे, लड़ने के लिए तैयार हो गए। उस सभा में लोग नहीं सो रहे थे, इसलिए मैंने इस सभा को कहा। किसी तरह से रति तो होनी चाहिए, रति का अर्थ रक्त होना, चाहे क्रोध से, चाहे प्रेम से, चाहे जैसे भी। और कौन किस कौन कैसे लगा हुआ है कृष्ण में, उसको बताया जा रहा है। तो नराणाम मृणाम नरवर, मृणाम नरवर, मृणाम पौरादी नाम, कि वह द्वेषादी राहित्याद उत्पत्तिया एवं प्रेम सामान्य बता, जो द्वेषी नहीं थे कृष्ण के, सामान्य पब्लिक थे, और जन्म से ही कुछ भगवान से प्रेम करने का स्वभाव था। जैसे सामान्य जनता कृष्ण के अद्भुत तेज प्रभाव, कृष्ण बलराम के अद्भुत तेज प्रभाव सौंदर्य को देख करके चकित हो गए, विस्मय के कारण वे कृष्ण को देख रहे थे। इसमें श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी कहते हैं विस्मय रति। जब किसी चीज पर आदमी विस्मित होता है, आश्चर्य करता है, तो उसको और ध्यान से देखता है, ये विस्मय रति। तो इस सामान्य जनता में बात हुई, मनुष्य में। और स्त्रियां स्मरो मूर्तिमान, उस सभा में जो ज्योति स्त्रियां थी बैठी थी, वे जब देखी श्री कृष्ण बलराम को, ऐसा लगा कि मूर्तिमान कामदेव उपस्थित हो। यहां पर अन्य वर्णन की अपेक्षा विशेष वर्णन है, मूर्तिमान शब्द का केवल यहीं पर प्रयोग है। यही है कृष्ण का स्वरूप जो स्त्रियां देख रही है, जो सामान्य मनुष्य देख रहे थे वो भी स्वरूप है। श्री कृष्ण विस्मय से पूर्ण है, आश्चर्यमय है ही, और स्त्रियां जो देखी तो उनका पूर्ण सौंदर्य उनके सामने प्रकाशित हुआ भगवान का। इसीलिए वे ऐसा अनुभव की कि मूर्तिमान कामदेव हमारे पास होंगे, तो एक तक देखने लगी और मन में संकल्प करने लगी, मनाने लगी देवताओं से कि हो, ये हमारे प्रियतम हो जाते, हमारे प्रियतम हो जाते, ये इच्छा हो रही थी। ध्यान रखना चाहिए कि श्रीकृष्ण रति के विषय है, विषयालंबन है। कृष्ण प्रेम या कृष्ण के प्रति कोई भाव होता है तो कृष्ण उसके आलंबन है और भक्त भी आलंबन है। जैसे हम लोग सुनते हैं भक्ति लता, तो लता के दो आलंबन होते हैं, एक तो जहां उत्पन्न होती है जिसको आल बाल कहते हैं थाला, वो है आलंबन। आलंबन का अर्थ जहां वो टिक सके, वो एक आलंबन है। और दूसरा आलंबन होता है कोई वृक्ष या कोई जिस पर चढ़ती है लता, जिस तरफ बढ़ती है। तो श्री कृष्ण भाव के प्रीति के विषय आलंबन है और भक्त आश्रय आलंबन होता है, उसका हृदय आश्रय आलंबन होता है। क्यों उधर से रिकॉर्ड कर रहे हैं जो मना किया गया है, तो यहां रिकॉर्ड मत कीजिए। तो श्रीकृष्ण सबके विषय, यहां जितने भी भाव हैं रंगशाला में उसके विषय आलंबन है कृष्ण, पर आश्रय आलंबन भिन्न भिन्न है। जितने पहलवान हैं वे क्रोध रति के आश्रय अवलंबन हैं। क्यों क्रोध बढ़ रहा था उनका? क्योंकि ये दोनों मस्त चाल से आए और उनको पर्वत के समान दिखाई दिए, इसलिए इनका क्रोध बढ़ा, इनका चित्त जलने लगा। ये आश्रय हैं कृष्ण रति के, मतलब क्रोध रति के। तो स्त्रियां श्रृंगार रति के आश्रय, भगवान के प्रति प्रीति उत्पन्न हुई, प्रियता, बहुत प्रिय लगे कृष्ण, मूर्तिमान कामदेव जैसे। आप देखते ही संसार में किसी का किसी से कुछ लगाव होता है और किसी के मन में होता है कि ये सुंदर है, ये सुंदरी है। क्यों? काम वासना के चलते। और काम जबकि मूर्तिमान नहीं होता है, एक विचार मात्र है, मन में रहता है, जब उसका ऐसा प्रभाव होता है, जब साक्षात मूर्तिमान काम आ जाए तो कितना सुंदर होगा। तो इनमें भगवान से मिलने की, भगवान के साथ रहने की, बात करने के लिए बहुत प्रिय है, जैसे प्राण प्रिय है, इससे भी अधिक प्रिय कृष्ण लगे स्त्रियों को। तो ऐसा अनुभव है कि मूर्तिमान काम आ गया। स्त्रियां यहां पर आश्रय आलंबन है और कृष्ण विषय आलंबन है। और अस्थाई भाव क्या है यहां? रति ही, प्रियता ही अस्थाई भाव है। और चौथे प्रकार के लोग थे गोपा नाम स्वजनों। उस सभा में वृंदावन से आए हुए गोप जो बैठे थे, उनको क्या लगा? ओह, हमारा सखा। उनको वही जो हमेशा दिखाई देते वही दिखाई दे, कोई ऐसा नहीं, दूसरे रूप में नहीं दिखाई दे। गोपाल नाम स्वजन, स्वजन अपने जन के रूप में, परंतु सभी हंसने लगे उस सभा में। देखिए, वहीं पर पहलवानों में क्रोध हुआ, लड़ने का उत्साह हुआ, और गोपों में हास्य। लोग आपस में बात करने के सिरदाम आदि तो अजीब भेष बनाए हैं, अद्भुत नाटक कर रहे हैं। इसीलिए हमारे साथ नहीं आया, ये हार कहां से टांग लिया? अगर कोई कहे कि हाथी तुम्हारे ने मारा है तो फेंक देना चाहिए, ये क्यों लिया है? उनको कोई घृणा नहीं हो रही थी, उनको अच्छा लग रहा था, उसे कृष्ण की ओर शोभा ही बढ़ी थी उनकी दृष्टि में। तो कृष्ण स्वजन के रूप में लगे, स्वजन के रूप में, सख्य में, सख्य रस में प्रीति ही प्रसन्नता, यही अस्थाई भाव है। तो प्रसन्न हुए और हंसने लगे, प्रसन्नता से हंसने, न कोई विस्मय हुआ, न और कुछ भाव हुआ, प्रसन्नता हुई। एक नया रूप देख करके, रक्त मद बिंदु और पसीना से युक्त, और इस तरह से सभा में कछनी काछे हुए आए, फेंटा बांधे हुए, कोई आए आदमी और सभा में लंगोटा पहने हुए आ जाए तो जो उसका अपना आदमी होगा वो हंसेगा, कहेगा जाकर के धोती पहन कर आओ। ये तो देखे हमारा सखा है, उनको हंसी आ रही थी, खूब हंस रहे थे सखा आपस में, हास्य रति, हास्य रस उत्पन्न हुआ। तो सखाओं में साग्रज कृष्ण कथम भूत विदित, स्वजन विदित, स्वजन के रूप में विदित दिखाई दिए उनके भाव के अनुसार। और असताम क्षिति भुजाम, जो असत खल राजा थे, राजा वहां जुटे थे ना, आपने सुना कि राजा लोग आकर के बैठे थे, तो वहां ज्यादातर कंस सखा लोग ही बैठे थे। राजा का मित्र राजा होता है, तो कई राजा उस निमंत्रण उस सभा में आए थे, तो उसमें 90% समझिए वही खलमंडली ही थी, राजाओं में राजा जो जुटे थे वे सब असत थे। तो जो असत राजाओं ने देखा कृष्ण को बलराम जी के साथ, तो उनको कैसा दिखाई दिया, साक्षात काल। जो बुरा काम करता है उसको काल दंड देता है, साक्षात काल जैसे दिखाई दे। तुम सब राजा जुटे थे और वो देख रहे थे कि यह कठिन दंड दाता आ गया। गोस्वामी तुलसीदास जी इसी का अनुवाद किए हैं रामचरितमानस में। वो जनकपुर में जो सभा लगी हुई थी धनुष तोड़ने के लिए, देश देश के भूपति नाना आए सुने हम जो पंठाना, तो देश देश के राजा वहां भी जुटे थे, वहां तो ज्यादा जुटे थे राजा, क्योंकि स्वयंवर था, कंपटीशन था, तो उसमें भाग लेने के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड से ही क्षत्रिय आए थे राजा लोग, जिसमें रावण तक गया था और बड़े बड़े राजा गए थे। तो रावण आदि तो जब देखे धनुष की गुरुता को तो अपनी इज्जत बचाने के लिए पीछे से भाग गए कि हमसे नहीं टूटेगा तो लोग हंसेंगे, और लोग लग रहे थे बाणासुर और रावण आदि गमही सिधारे तो चुप से चले गए थे, अगर नहीं टूटेगा तो हमारी बेइज्जती होगी, तो लोग तो चले गए थे और सब जुटे हुए थे जो राजमा रहे थे, सब जुटे हुए थे। अभी चालू करने के पहले ही श्री राम और श्री लक्ष्मण जी पहुंचे उस सभा में। ठीक श्री मथुरा में जो हालत हुई वही अयोध्या में हो रही भगवान को देखकर। तो रहे असुर छल छोनी पर वैसा तीन प्रभु प्रकट काल सम देख। जो असुर थे राजा नाम था जिनका, वे जब देखे प्रभु को तो लगा कि काल आ गया। रहे असुर छल छोनी पे, जो कपट से राज भेजते थे अथवा आचरण सारा असुर का था और वेश राजा का, तो वे प्रभु को देख करके तो बहुत कांप गए, इनको दंड देने वाला आ गया। और इसी तरह से गोस्वामी जी सबका वर्णन किए। तो पहलवानों का भी वर्णन किए हैं, देखा ही रूप महारण धीरा, मनहु वीर रस धरे शरीरा। मल्लों के लिए ठीक अनुवाद कर, तो देखा ही रूप महारणधीरा, जो रणधीर थे चारुण मुष्टिकादि, वे तो देखे कि वीर रस ही मूर्तिमान आ गया। तो किसी भी योद्धा में इच्छा होती है कि हम लड़ें, भले मर जाएं लेकिन किसी बड़े व्यक्ति से लड़े एक बार भीड़ देखें, इतना बड़ा वीर रस, बड़े दो वीर आए हैं सभा में तो हम लड़ेंगे, तो उत्साह हुआ। ठीक गोस्वामी तुलसीदास जी इसका अनुवाद वहां कर रहे हैं। पूर्वासीन देखे दो भ्राता भाई, कैसे हैं पूर्वासी देखे दो भाई, वो आगे आ रहा है उसको कहेंगे। तो असुर राजाओं को, दुष्ट राजाओं को कृष्ण बलराम महाशासक के रूप में, काल के रूप में दिखाई दिए, और स्वपित्र शिशु और अपने पिताओं, दोनों पिता को, श्री वसुदेव जी को और श्री नंद महाराज को, अथवा कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव के जितने भी पुरुष थे वहां, चाहे स्त्रियां थी, सब मातृभाव वाली स्त्रियां और पितृभाव वाले पुरुष जो भी थे उनको ऐसा लगा बिल्कुल दो बच्चे आए हैं, शिशु दो बच्चे आए, और उनमें क्या हुआ, उनमें कौन रति उत्पन्न हुई, उनमें करुण रति उत्पन्न हो गई, करुण रस उत्पन्न हुआ, दया आ रहा, दया आने लगो हो इस सभा में ये बच्चे आए हैं, उसी समय और बाद में भी इस सभा में आए हैं फूल जैसे कोमल शरीर वाले, और इन दोनों बच्चों को पर्वत जैसे शरीर वाले पहलवानों से लड़ाया जाएगा, तो वो तो उनके हृदय में ये शोक रति उत्पन्न हो गई, शोक हो रहा था बच्चा को देखकर, नंद बाबा के हृदय में शोक उत्पन्न हो रहा था, वसुदेव जी के हृदय में शोक उत्पन्न हो रहा, एक ही कृष्ण है किसी में क्रोध पैदा कर रहे हैं, पैदा कर क्या रहे हैं उसकी स्थिति के अनुसार क्रोध हो रहा है, भगवान कुछ नहीं कर रहे हैं, भगवान जैसे हैं वैसे हैं, तो अपने अपने भाव के अनुसार उत्पन्न हो रहा है, ये उत्पन्न हो रहा है। तो वो तो शोक में डूब गए, वसुदेव जी, नंद बाबा और भी जो थे भगवान में पुत्र भाव रखते थे, तो उनको कृष्ण शिशु के रूप में दिखाएंगे। यह भी एक सुख है कि कृष्ण के लिए शोक हो, ये हमारे भागवत आदि ग्रंथों में बात स्पष्ट की गई है सर। ऐसे कृष्ण के प्रति क्रोध हो तो वो एक रति है, लेकिन वो क्रोध ऐसे नहीं है जैसे पहलवानों को क्रोध हो रहा है, वो वास्तव में क्रोध रति नहीं है, क्रोध उत्पन्न हो लेकिन वो कृष्ण के प्रेम के कारण क्रोध उत्पन्न हो, जैसे राधा रानी को क्रोध उत्पन्न होता है। आज से ललिता मेरे कुंज के पास भी नहीं आने देना उनको, ऐसे कपटी से मैं बात नहीं करना चाहते, अगर उनको चंद्रावली के पास जाना है तो फिर इस मान मंदिर के बाहर ही रखो, इधर मत आए, जहां मान की है, मान करके बैठी है, वहां उनके पास आने की तो बात दूर है, इस कुंज के बहुत दूर तक प्रवेश वर्जित है, इसको कहते हैं क्रोध रति, प्रेम ही क्रोध का रूप धारण करता है। लेकिन ये जो क्रोध है पहलवानों का, इसीलिए श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं इसको रस नहीं कहा जा सकता, ये रसाभास है, परंतु माता पिता ने जो बच्चे के भविष्य की चिंता करके, उसके योगक्षेम की चिंता करके जो शोक होता है, चिंता होती है, तो वो वास्तव में वो रति है, जिस मां यशोदा को चिंता होती है मेरा बेटा ये माखन का मटका फोड़ रहा है, इसको इतनी बुद्धि नहीं है कि घर का सामान बर्बाद किया, इसके चलते उनको शोक होता है, इसको ऐसे दंड देना है, पढ़ाना है, लिखाना है, तो इसको उखल में बांध करके रखूं इसको ठीक करने के लिए, इसके साथ शोक होता है कि बेटा इतना बेवकूफ निकल गया इतनी बुद्धि होनी चाहिए ना कि घर का सामान फोड़ रहा है, और कितनी कम बुद्धि है, उसको जमीन पर रखा गया तो इतना बहुत बड़ा अपराध हो गया, यशोदा से जमीन पर रख करके दूध उतारने चली गई, तो इसी पर इतना रंज हो गया। देखिए कृष्ण में क्रोध उत्पन्न हुआ, उसके आश्रय हैं कृष्ण, विषय कौन है, मां, मां के प्रति क्रोध हुआ कृष्ण को, तो मटका आदि फोड़ दिए, लेकिन प्रेम ही इस तरह से क्रोध का रूप धारण करके आता है। तो वास्तविक सेंस में जब क्रोध को रस कहा जाए और इस तरह से क्रोध रति कहा जाए, तो प्रेम के अर्थ में प्रयुक्त होता है। परंतु यहां ये बात दिखाई जा रही है कि किस तरह से पहलवानों में क्रोध उत्पन्न हुआ और बसुदेव जी, नंद बाबा आदि पितृभाव वाले भक्तों में शोक उत्पन्न हो गए। अब वो इसी चिंता में डूब गए, कृष्ण को देख करके आनंद नहीं हुआ, शोक हो गया, बड़ी गलती हुई, इस बच्चे को लेकर के हम आ गए। नंद बाबा ये सोच रहे थे अब क्या उपाय किया जाए, कैसे निकल करके भागे, कंस के सामने ही दरवाजे से निकल करके तो जा नहीं सकते थे। हे भगवान नारायण, कोई ऐसा उपाय करो कि हम दंगल ना हो पा रहे। इस तरह से शोक रति उत्पन्न हुई और मृत्युर्भोज पते, कंस ने जब देखा कृष्ण को तो उसे ऐसा लगा कि मेरी साक्षात मेरी मृत्यु आ गई। बहुत कठोर लगे, भयावह लगे, इसको भयानक रस कहते हैं। कंस को भय लगा, वो जो बैठा था तो कलेजा धक धक करने लगा, कांपने लगा, इतना बड़ा वीर लेकिन भयावह भय उत्पन्न हुआ। किसी के सामने अगर मृत्यु आ जाए सामने, कौन नहीं भयभीत होगा। थोड़ा सा कोई घटना होने पर धक धक छाती करने लगती है, तो कृष्ण का आना सभा में और कंस की छाती धड़कने लगी। केकर फाटेला छतिया छतिया छतिया, बैरी जनबल हमार बैरी जनबल हमार। कंस हमेशा ऐसे ही रहता था, लेकिन जब देखा सभा में प्रवेश करते हो तो उस समय उसकी धड़कन तो कई गुना बढ़ गई, डर गया, उसका चेहरा उड़ गया, भय रति उसमें उत्पन्न हो। तो यह भी वास्तव में रस नहीं है, रसाभास था, कंस भय उत्पन्न हो गया। भय के आश्रय कौन है, कंस, विषय है श्री कृष्ण। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि जब भय हुआ तो उसके अनुसार क्या क्या दशा होती थी, ठेस का, कलेजा का और शरीर का, इस पर भी चिंतन करना चाहिए। कौन से देखा तो लगभग साक्षात मेरा मरण आ गया, और अविदुषान विराट जो अज्ञात है, कंस के पुरोहित आदि ब्राह्मण जो ये समझते थे कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हम ये जानते हैं, भृगु संहिता जानते हैं, हम ये पुराण जानते हैं, वो पुराण जानते हैं, शिव पुराण के तो महापंडित हैं। ये अभिमान था कि हम बहुत जानकार हैं, हमेशा देवी भागवत पढ़ते रहते थे। तो ऐसे अपने ब्राह्मण देखा है ना जिनको बहुत गर्व रहता है, और हरे कृष्ण वालों को ये कहते हैं क्या बंदर की तरह उछलते हैं, गंभीर होना चाहिए। अगर आप भगवान की भक्ति करते हैं तो वो लोग अरे नहीं नहीं, किसी की भी भक्ति की जा सकती है, चाहे दुर्गा जी की करें, काली जी की करें, चाहे और भी नाना प्रकार के आजकल के मनगढ़ंत सब करते। बहुत ज्ञान का अभिमान था, पर थे अविदुष, अविदुषण अज्ञ, जो भगवान के अप्राकृत रूप को, चरित्र को, धाम को नहीं जानते हैं, उनको कहते हैं अविदुषण, मूर्ख। भले लोक दृष्टि से पढ़े लिखे हैं, पंडित हैं, लेकिन अविदुष, जो भगवान अप्राकृत हैं, चिन्मय हैं, दिव्य हैं, इसको नहीं जानते हैं। तो इन लोगों ने जब देखा कृष्ण बलराम को तो लेकर साधारण प्राकृत बुद्धि करके कि ऐसे ऐसे असभ्य लड़के इस सभा में कहां से आ गए, इनको कोई रोका नहीं, उनमें घृणा रति उत्पन्न हुई, घृणा उत्पन्न हुई, इनको जल्दी बाहर करो, हड्डी लेकर के इस यज्ञ मंडप में सभा में आए। चाहे पहलवान कहां मंगल दृश्य होना चाहिए, बिना नहाए श्वेद लगा है या मद बिंदु लगा है, रक्त लगा है, तो कम से कम धो करके आना चाहिए था ना। सभा में आगे खून लगा हुआ है कपड़ा पर, और भगवान पर चाहे खून लगे या ब्रज का कीचड़ लगे, दोनों एक समान है। नृसिंह भगवान खून लगने से क्या आप बुरे लगते हैं, कितना अच्छा लगते हैं। कस्पू का खून लगा है तो उसे और सुंदर लगते हैं। भक्त जन जानते हैं इस बात को, क्योंकि उन्हें मालूम है कि भगवान चिन्मय हैं, दिव्य हैं। ऐसा नहीं कि एक मनुष्य का दैत्य का खून लगा है तो कोई घृणा करके, नहीं नहीं, हम भगवान नृसिंह देव की सौम्य छवि चाहते हैं, हम ये सब नहीं चाहते। तो जो अविदुष है, मूर्ख है, जहां तहां विदेशों में इधर उधर कहते हैं हिंदुओं का ये भगवान बड़ा खूंखार है, तो तुम्हारा भगवान चाहिए कि उसको दूसरा असुर ही सूली पर चढ़ा दे, ऐसा सीधा साधा भगवान चाहिए, इसको भगवान थोड़े कहते हैं। आवे धर्म का प्रचार करने के लिए और उसी को सूली पर झुला दिया जाए, तब तो भगवान आएगा ही नहीं डरकर, बाप रे बाप, बहुत खतरनाक संसार है। इसको भगवान कहते ही नहीं है, भगवान है नृसिंह देव, चैलेंज किया, छाती फाड़ करके फेंक दिया क्षण भर में नक्श, इसको भगवान कहते हैं। लेकिन मूर्ख लोग नहीं जानते तो कहते हैं हिंदुओं का भगवान बड़ा खूंखार है, ये है वैसा है। तो तुम रखो एकदम कमजोर भगवान, किसी काम का नहीं। भगवान का मतलब ही समझना चाहिए ना, जिसमें अनंत बल, जिसमें अनंत सौंदर्य, अनंत ज्ञान, जस वैराग सब अनंत है, उसको भगवान कहते हैं। बस किसी को ही भगवान कह दो तो तुम्हारा प्रेस है, तुम्हारा कंप्यूटर है, कुछ भी लिख दो, लेकिन वेदव्यास देव और ऋषि मुनि इसको स्वीकार नहीं कर सकते, वे तो स्वीकार करते कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण भगवान। तो देखने का अंतर है, कंस के सभा में उस रंगशाला में जितने भी ब्राह्मण थे, पुरोहित थे कंस के, वे सब देखे कि असभ्य लड़के हैं, कहां कैसे जाना चाहिए भी ध्यान नहीं है, ना अच्छा कपड़ा पहने, ना खून लगा करके आए, नाक भौं सिकुड़ गए। अरे उसी सभा में भगवान कामदेव जैसे दिखाई दे रहे हैं, और जोगियों को आगे अब सुनेंगे परम तत्व पर ब्रह्म के रूप में दिखाई दे रहे हैं, और उन लोगों को विराट, विराट का अर्थ विगत रात, कोई अच्छा नहीं लगना, घृणा होना, ऐसे ही कुछ असुर होते हैं अल्पज्ञ, जिन्हें कृष्ण पसंद नहीं पड़ते, नहीं हटाओ इसकी चर्चा मत करो, यही कृष्ण में जो दूसरे की स्त्रियों के साथ नाचता है, वही कृष्ण में जो ब्रज में गोपियों के घर में चोरी करके खाता है, इसी की बात करते हैं। इस तरह से भगवान की लीलाओं को समझ ही नहीं पाते हैं। नमम दुष्कृतिनो मुद्धा प्रपद्यन्ते नराधम, ये जो नराधम हैं, दुष्कृति हैं, ये मुझे नहीं जानते हैं और इसलिए मेरी शरण ग्रहण नहीं करते, नहीं समझ, अपना अलग अलग भगवान खड़ा करके और पूज रहे हैं, और पूजन की पद्धति भी अपने मन से ग्रहण ली है, भगवान है और भगवान के पूजन की पद्धति भी निश्चित है, कैसे पूजा की जाएगी, कैसे भजन किया जाएगा, लेकिन जो भगवान गढ़ लेते हैं तो पूजा भी अपने ढंग की करते हैं। भगवान गीता में इस बात को कहते हैं, अपनी विधि उनकी होती है, वेद विधि नहीं होती है, उस श्लोक में कहते हैं ना, अपनी विधि होती है। तो ब्राह्मणों कंस के पुरोहित आदि को बिल्कुल बेढंगा दिख रहे थे दोनों भाई, ये खून लगने के कारण और कंधे पर हड्डी लेकर आने के कारण वो बिल्कुल घृणा, इसको जुगुप्सा रति कहते हैं, घृणा होना है। लेकिन वो भी देख रहे थे कृष्ण को खूब ध्यान से कि और इस फेर में थे, किसी को कह भी रहे होंगे कि इनको कोई पुलिस नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, इनको बाहर करो, कहां से घूम रहे हैं। चित्त लगा हुआ था उनका, क्योंकि अगर घृणा से चित्त न लगे तो उसको जुगुप्सा रति नहीं कहेंगे, जुगुप्सा रति उत्पन्न हुई। और वहीं पर जो योगी थे, योगियों को साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा के रूप में भगवान दिखाए गए, पर ब्रह्म ब्रह्म दिव्य चिन्मय तत्त्वम परम योगी नाम, योगियों को परम तत्व, योगी माने ये सब हठ योगी और शरीर, ये योगी नहीं जो केवल शरीर को मोड़ने की बात करते हैं और हवा भरना निकालना, इसको योगी नहीं कहते। योगी नाम अपनी सर्वेशम मदगते नाम तरात्मा नाम श्रद्धावान भजते हो नाम समय युक्त तमाम, योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी वो है जो अपने मन को मुझमें लगा करके मेरा भजन करता है, उसको योगी भगवान कहे हैं। और केवल व्यायाम ये सब सिखाना, केवल शरीर तक ही जिसकी पहुंच है उस योग को हठ योग कहा जाता है, इसको योग नहीं कहा गया। गीता के अनुसार ये सब योग नहीं है, योग है भगवान की कथा सुनना, कीर्तन करना, प्रणाम करना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम, इसको योग कहा गया है। और उस योग का जिसका आसन प्राणायाम आदि से संबंध है वो शरीर तक ठीक रख सकता है, शरीर तक, लेकिन आत्मा शरीर है नहीं, शरीर छोड़ करके जाना ही है। तो भगवान के धाम में जाए, भगवान से भी जुड़ा रहे, जीव को युक्त करना भगवान से, इसको योग कहते हैं। योग माने लिंक टू लिंक, जोड़ना, कृष्ण के प्रति जीव की भक्ति को जिस उपाय से जोड़ा जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, उसको योग कहते हैं। तो जो इसमें लगे हुए थे, जो श्रवण कीर्तनादि भक्ति में लगे हुए थे, योगी थे, उन्होंने देखा कि कृष्ण साक्षात ब्रह्म है परम, वो इसी रूप में देखे, तो उनमें शांत रति उत्पन्न हुई, वे उनका ध्यान करने लगे, देख करके आंख से देखते हैं फिर मन में देखते हैं, फिर आंख से देखते थे फिर मन में देखते, उन्हें अपार शांति मिली, सुख मिला, समो मन निष्ठता बुद्धि, उनकी बुद्धि ने निर्णय किया कि कृष्ण ही सब कुछ है, यही सब कुछ है, यही ब्रह्म है, योगियों ने अनुभव किया। और वृष्णी नाम पर देवता इति, और जो वृष्णी वंशी जादव वहां बैठे थे उस सभा में, वृष्णी वंशी थे, उस उन सब में भाव उत्पन्न हुआ कि ये हमारे इष्ट देव हैं, भगवान विष्णु के रूप में चतुर्भुज रूप में भी भगवान दिखाई दिए श्री कृष्ण, पर देवता इति इष्ट देव, उनको देख करके सेवा की भावना उभर गई, उमड़ गई, हमारे प्रभु आए, हमारे जीवन के सब कुछ है, इनकी सेवा करनी चाहिए, इनकी सेवा करनी है, ये करनी है, वो बड़े भाग्य से हमारे सामने आ गए। इस प्रकार से वहां बैठे हुए श्री उद्धव आदि थे, उनमें ये भाव उत्पन्न हुआ कि हमारे प्रभु हैं, ये है, जबकि अभी पहले से संपर्क नहीं हुआ है, उद्धव जी से संबंध नहीं पहले से था, रिलेटिव लगते थे, लेकिन भगवान तो अभी एक दो दिन हुआ आएगा, पर उनको देखते ही उद्धव आदि वृषवंशियों के मन में बात उत्पन्न हुई कि हमारे इष्ट देव, हम इनके सेवक हैं, और इस तरह के प्रेम भक्ति रति उत्पन्न हुई। इसको श्रीधर स्वामी जी ने कहा है सप्रेम भक्ति का, प्रेम से सेवा की भावना उत्पन्न हुई अपने इष्ट देव के प्रति। अब देखिए उस सभा में श्री कृष्ण प्रवेश किए साग्रज श्री बलराम जी के साथ, और 10 प्रकार के चित्त वाले, 10 प्रकार के अभिप्राय वाले ग्रुप बैठे हैं, और 10ों को 10 प्रकार से श्री कृष्ण दिखाई दिए। तो उसमें से 4 जो दिखाई दिए वो बिरधंगा, वो भगवान का स्वरूप नहीं है। जैसे पहली संख्या में मल्ला नाम असनी, मल्लों को दिखाई दिए दोनों भाई कि ये पर्वत के समान शरीर वाले हैं और पत्थर से भी अधिक कठोर शरीर है, हाथ या मुक्का जो भी है, जबकि कमल से भी अधिक सुकुमार दोनों हैं, कमल से भी सुकुमार है, हाथ आंखें परम सुंदर सब कुछ, पर उनको वैसे दिखाई दे रहे, तो उनको गलत दिखाई दे रहे थे भगवान, वो भगवान का स्वरूप नहीं है। मल्ला नाम असली निर्णाम नरवरा, सामान्य मनुष्यों को श्रेष्ठ मानव के रूप में, दिव्य मानव के रूप में, लोकोत्तर सौंदर्य तेज आदि से युक्त दिखाई दे रहे थे, उनको सही दिखाई दे रहा था, यह भगवान का स्वरूप है। और स्त्रीनाम स्मरो मूर्तिमान, स्त्रियों को मूर्तिमान कामदेव के रूप में परम सुंदर दिखाई दे रहे थे, यह भी श्री कृष्ण का स्वरूप है, बल्कि यही वास्तव में वो स्वरूपी है, किशोर अवस्था के परम सुंदर वनितोत्सव रूप शिव, यही है श्री कृष्ण का स्वरूप। स्त्रीनाम स्मरो मूर्तिमान, और गोपा नाम स्वजन, गोपों को अपने स्वजन सखा के रूप में दिखाई दिए, तो बिल्कुल सही, ये कृष्ण का स्वरूप है, वे आस्वादन कर रहे हैं। पर असतम क्षिति भुजाम शास्ता, जो क्षिति को भोग रहे थे, पृथ्वी के मालिक बने थे पर असुर थे, राजा थे, उनको शासक के रूप में, दंडदाता के रूप में कृष्ण ने दिखाई दिए, ये भी कोई वास्तविक नहीं देख रहे थे। कृष्ण बलराम जैसे हैं वैसे दिखाई नहीं दे रहे थे, वास्तव में स्वरूप से भिन्न दिखाई दे रहे थे। शास्ता स्वपित्र शिशु, और श्री वसुदेव जी और नंद बाबा को श्री कृष्ण शिशु के रूप में दिखाई दे रहे थे, तो उनमें जो शोक रति उत्पन्न हो रहे थे कि इस अयोग्य स्थान में हमारे बच्चे आ गए, वो रो रहे थे, बड़े उनके हृदय में दर्द हो रहा था, तो ये श्री कृष्ण का वास्तविक स्वरूप, क्योंकि श्री कृष्ण वास्तव में उनके पुत्र हैं, तो वे ठीक ठीक अनुभव कर रहे थे। और मृत्युर्भोज पते, ये गलत अनुभव कर रहा था कंस देख रहा था हमारी मृत्यु आ गई, अरे जो स्वयं आनंद घन है, सभी जीवों के सुहृद हैं, जिनसे सारे जगत को सुख मिलता है, वे प्रभु तुम्हारे मृत्यु के रूप में आ गए, ये गलत देख रहा था, ये 4 लोग गलत देख रहे थे। कौन कौन? मल्ल गलत देख रहे थे, और असत राजा लोग, और कंस, और विराट विदुषा, कंस के पुरोहित आदि, ये सब बिल्कुल गलत देख रहे थे, भगवान उनको वो अपने रूप में नहीं दिखाई दे रहे। पर 6 लोगों को निर्णाम, मनुष्यों को जो सज्जन थे, उनको, स्त्रियों को, सखाओं को, गोपों को, और माता पिता को, और वृष्णिवंशियों को, और योगियों को सही रूप में दिखाई दे। कृष्ण कृष्ण को देखा जा सकता है, समझा जा सकता है, लेकिन अब समझने के लिए जो अपना चित्त चाहिए ना, चित्त बनता कैसे है कृष्ण को समझने के, जब समझने के लिए जब कृष्ण के बारे में सुनेंगे बारंबार तो समझने के योग्य चित्त हो जाएगा, नहीं तो ऐसे नहीं समझ सकते। जब तक अभिज्ञों से तत्वज्ञों से कृष्ण के विषय में प्रचुर श्रवण नहीं करते हैं तब तक नहीं समझ में आ सकता। समझने का उपाय है कृष्ण को, जब इस तरह से हम सुनते हैं कि कृष्ण को 10 विध जन 10 प्रकार से देख रहे थे, तो क्या ये इच्छा नहीं होगी कि हम 6 विध में से एक हो जाएं? हम 4 विध बहिर्मुखों के अंदर न रहे। कोई कृष्ण को काउ के रूप में देखकर भागे कि भागो यहां से, ये सब तो काउ थोड़े हैं, वो तो परम सुंदर सांवले श्री कृष्ण है अपने भाई बलराम जी के साथ। तो कृष्ण इस तरह से दिखाई दिए। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि हरि भक्तन देखे दो भ्राता, जगत सुखदाता, लास्ट में लिखते हैं हरि भक्तन देखे दो भ्राता, सुंदर श्याम गौर जगत सुखदाता, ऐसा कहा। अंत में भी कहते हैं यही विधि रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी, जिसकी जैसी भावना थी, भाव था, उसी के अनुसार कृष्ण को देख रहे थे। जे जाकी रही भावना जैसी, एक ऊपर चौपाई में ये कहते हैं जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी, यही विधि रही भावना जैसी, ये भी लास्ट में लिखते हैं। तो उनको भी भगवान श्री राम वैसे ही दिखाई देते थे। इस संसार में कितने प्रकार के मनुष्य हैं, पर इन भक्तों को देखिए जिन्होंने भगवान को समझाया, भगवान से प्रेम करते हैं, सेवा करते हैं, भगवान की बात सुनकर के चित्त गदगद होता है, ये भी सोचते हैं क्या हम इस जीवन में भगवान कृष्ण को पा जाएंगे, तो कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, उपाय में लगे। और कुछ मनुष्य ऐसे हैं जिनको कृष्ण से कोई मतलब ही नहीं है, न द्वेष है न कोई प्रेम, तो कोई मतलब नहीं। ये भी एक चित्त की स्थिति है ना, क्या कृष्ण खाने को दे रहा है, खाने को हमारी दुकान दे रही है, दुकान ही हमारा मंदिर है और ग्राहक ही हमारा इष्ट देव। तो इष्ट देव की पूजा करते हो और नफा ज्यादा लो तो और पूजा होगी, ग्राहक का संतोष ही हमारा ध्येय है, और कोई पैसा उसे कमाने का ध्येय नहीं है। ठीक है दुकान भी करे आदमी, खेती करे, और भी जो भी व्यापार करना है करे, लेकिन कृष्ण को सेंटर में रखना चाहिए। यह कंस की सभा में बैठे हुए सभी लोग गृहस्थ ही थे, लेकिन उन 4 प्रकार के खलों में कोई नहीं होना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अपने भाव के अनुसार ही भगवान को समझ सकते हैं, इसलिए अपने भाव को सुधारना है, अन्यथा गंगा जी के तट पर यदि प्याज रोपा जाए, भांग रोपा जाए, तो भांग रस ही वो खींचेगा, है ना। गंगा जी का तट निर्मल है और अमृत है जल, और उसके तट पर रोपिए तो जो पौधा रोपेंगे तो पौधा अपने अनुसार ही गंगा के रस को खींचेगा, गंगा का जल अमृत है, अमृत होने से पहले क्या होगा? अगर मिर्च रोपेंगे तो तीता ही खींचेगा। गंगा जी का जल तीता नहीं है, तीता वो पौधा है, उसका स्वभाव ही ऐसा है, भाव है। गंगा जी के तट पर रोपिए चाहे कहीं किसी सरोवर के तट पर, जिसका जल अमृतमय है, वो तीता ही खींचेगा। गन्ना को रोपिए, उसका स्वभाव है, वो मीठा ही खींचेगा। इसीलिए पहले भाव का सुधार होना चाहिए। कृष्ण भगवान है, सारे जगत के नाथ हैं, जगन्नाथ हैं, सभी जीवों के सुहृद हैं, दिव्य हैं, परमानंद घन हैं, और हमारे बिल्कुल अपने हैं। इस प्रकार का जब भाव होगा तो कृष्ण को समझ जाएंगे, ठीक समझेंगे। अन्यथा कृष्ण के प्रति भाव तो है ही सबका, कुभाव है। जैसे यहां चार लोगों के विषय सुना, पहलवानों के विषय में, दुष्ट राजाओं के विषय में, और कंस के पुरोहितों के विषय में, और कंस के विषय में। चार की दृष्टि जो रियलाइजेशन था बिल्कुल कंडम था, किसी काम का नहीं। तो रियलाइजेशन तो होगा ही, ऐसे भगवान की सृष्टि में हमारे तो भगवान से तो बच सकते नहीं, भगवान के प्रति तो कुछ भाव करना ही पड़ता है। लेकिन ये कोई भाव है कि हम मानते हैं लेकिन वो निराकार है, इस प्रकार के भाव वाले तो कंस के सभा में भी नहीं थे। ये ग्रहवा ग्रुप ये कहीं नहीं, वो था ही नहीं। मानता था कृष्ण है लेकिन हमारे शत्रु हैं, हम लड़ेंगे, पहलवान है, ये है वो है। लेकिन ग्रहवा ग्रुप कहीं कोने में भी नहीं बैठा था कि नहीं, वो निराकार आ गया। निराकार कहां से आ गया, कहां जाएगा? अद्भुत गलत धारणा है समाज में। तो भगवान श्री कृष्ण इस तरह से दिखाई दिए, दस प्रकार के अभिप्राय के लोगों को, दस प्रकार से। अब अपने चुनना है कि हम कौन प्रकार में रहेंगे। चाहे नंद बाबा वसुदेव जी के ग्रुप में रहिए, कृष्ण को बच्चा मानिए, अथवा श्रीदाम सुबल आदि के ग्रुप में बैठिए, ये हमारा सखा है कृष्ण, अथवा श्री उद्धव जी आदि के साथ बैठिए, कृष्ण हमारा इष्ट देव है, हमारे सब कुछ है, अथवा जोगियों के झुंड में बैठ करके ध्यान कीजिए कि यही परब्रह्म है, परमात्मा है, चिन्मय है, और संसार के आकर्षण से मुक्त होकर के कृष्ण में मन लगाना, अथवा ज्योति स्त्रियों के भाव में, श्री गोपी जनों के भाव में कृष्ण हमारे प्रियतम हैं, यह भाव उत्पन्न किया जाए। ये भाव है वास्तव में, कृष्ण वास्तव में इसी तरह से है, पर अपने पर ये निर्भर करता है कि हम कैसे गुण को ग्रहण करेंगे। सब कुछ अपने चित्त पर निर्भर करता है। कंस ने कृष्ण को देखा तो भय उत्पन्न हो गया, कांपने लगा कि मेरा मरण आ गया, और वहीं पर ठीक विपरीत वसुदेव और नंद बाबा ने ये भाना है कि कृष्ण को ये लोग मार देंगे, हमारा बच्चा है, इतना फूल जैसा सुकुमार शरीर वाला एक इसी दंगल में रहेगा। कंस कहा था पहले कि आपका पुत्र धनुष तोड़ा है, कोई बात नहीं, इसे इसके पराक्रम का पता चलता है, मैं इसीलिए तो इनवाइट किया पहलवानी के लिए, ये निश्चित है कि पहलवानी में इन दोनों को लड़ना है। ये बात सोच सोच करके वसुदेव जी और नंद बाबा रो रहे थे, उस सभा में शोक छा रहा था। भगवान के प्रति पुत्र भाव, भगवान के प्रति प्रियतम भाव, भगवान के प्रति इष्टदेव भाव, स्वामी भाव, सखा भाव, इसी में से किसी भाव को पोषित करना चाहिए। और पुष्ट होता है भाव भगवान के विषय में सुनने पर।
श्रील सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं कि हतम कुबलया पीड दृष्टा तावक दुर्जयऊ कंसो मनस बपी तदा भृषम उद्वी द्विजय निर्पा। हे महाराज परीक्षित, यद्यपि कंस बहुत मनस्वी था, धैर्यवान व्यक्ति था, धैर्यवान को मनस्वी कह, लेकिन जब उसने कुबलया पीड को मरा हुआ देखा, देखने का अर्थ यह है कि जब कंस सुना कि कुबलया पीड मारा गया तो सभा की कार्यवाही को देखा और कृष्ण बलराम प्रवेश की, जब बैठ गए तो कंस से किसी मंत्री से कहा कि सचमुच मार दिया, चलिए जरा देखे। तो जाकर के देखा होगा अथवा कोई फोटोग्राफर फोटो लेकर के आया होगा कि मरा हुआ है। कुबलया पीड को पहचानते हैं ना। यहां दृष्टवा शब्द लिखा गया, इसीलिए मैं ये अर्थ कर रहा हूं। कौन से मूल वाक करता है इसमें, हतम कुबलया पीडम दृष्टवा, मरे हुए हाथी को देख। ये कोई आश्चर्य नहीं है, रंगशाला के गेट के पास ही मरा हुआ पड़ा था पहाड़ जैसा हाथी, तो कौन नहीं देखना जाएगा। ये तमाशा चिड़िया घर देखने जाएंगे, हाथी मर गया जरा देखे देखे देखे, खमखम लोग बाहर हो गए होंगे बाहर। लेकिन वास्तव में कृष्ण के बैठने के बाद कुछ लोग गए होंगे, कुछ और ज्यादा लोग तो कृष्ण को ही देख रहे थे, मरा फरा हाथी क्या देखे। लेकिन कंस के बारे में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं दृष्टवा, तो वो किसी न किसी उपाय से गया होगा अथवा अपने चर के दृष्टि से देखा होगा कि कोई आकर तो उसका अपना आदमी कहा कि ना सरकार तो खत्म हो गया है, एकदम सही बात, तो मान लिया। इसको भी देखना कहेंगे, सब समय अपने आंख से ही नहीं देखा जाता है। तो कंस अपने किसी व्यक्ति के मुख से सुना कि वो मार दिया गया, तो कंस जब ये सुना कि कुबलया पीड मार दिया गया और ये भी देखा, विचार किया कि कृष्ण बलराम दुर्जय हैं, इनको जीतना बड़ा कठिन है, असंभव है, तो मनस्वी होते हुए भी भृषम उद्वित द्विजय बहुत अधिक डर गया, बहुत अधिक डर गया, पहले से कई गुना अधिक भय में पड़ गया। भय क्या हो रहा था कि जो बात आकाशवाणी में सुना था देवकी वसुदेव के विवाह के समय, और इसके बाद जो बात नारद जी ने कहा कि तुम्हारी मृत्यु कृष्ण बलराम के हाथ से है, लगता है वो हो करके रहे। इसीलिए जो कृष्ण बलराम के हाथ से मृत्यु है तो उनको ही अपने पास बुलाया था यज्ञ का बहाना करके कि मारना है, लेकिन सब इसके जो आसपास के थे सब मरते जा रहे हैं, तो इसकी छाती बहुत धड़कने लगी, बहुत उद्विग्न हो गया। भृषम उद्द्विज बहुत अधिक उद्विग्न हो गया। हतम दृष्टवा, ये श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी लिखते हैं कि दृष्टवा क्यों कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, तो वे कहते हैं कि रंग भूमि में ही उसका जो मंच था बहुत ऊंचा था, तो सीढ़ी से चढ़कर और देखा तो दिखाई पड़ रहा था कुबलया पीड, ओ सचमुच मार दिया। ये अर्थ करते हैं तो मर गया, इसलिए और अधिक भयभीत हो गया। कृष्ण बलराम को दुर्जय क्यों माना कि हाथी को मार दिए और हाथी उनको कुछ नहीं कर पाया, तो ये दोनों दुर्जय है। बहुत भरोसा था कंस का कि रंगशाला में प्रवेश करने पर गेट पर ही कृष्ण का वध हो जाएगा, निश्चिंत था। और कई बार वो जो हाथी हांकने वाला था महावत, वो कहा था कि सरकार आप निश्चिंत रहिए, हम आपका नमक खाए हैं, इतना दिन फ्री वेतन लेते हैं, आखिर किस दिन काम आएंगे, और हाथी भी किस दिन काम आएगा। निश्चित रहिए मैं कृष्ण बलराम को मार दूंगा। लेकिन जब हाथी भी मारा गया उसके साथ साथ हेड पहलवान हेड महावत भी मारा गया और सब, तो कंस को एकदम विश्वास हो गया मरूंगा, बहुत अधिक डर गया। अब वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी कृष्ण बलराम आकर के रंग भूमि में सब लोगों को दर्शन दे रहे हैं, पूरा शान दिखा रहे हैं कि हम लोग कितने बड़े हैं। हाथी दांत लिए हुए और लगे घूमने जहां तहां, तो बड़ा रास्ता था मंच मंच पर इधर उधर घूमने का जाने का। सबको देख रहे थे कृष्ण बलराम और घूम रहे थे। तौरे जतुरंग गतौ महाभुजौ विचित्र वेशा भरण सगंगरौ जथा नटौ उत्तम वेशधारिणौ मनः क्षिपन्तौ प्रभया निरीक्षतां। वे दोनों भाई उस रंगमंच में रंगशाला में बहुत सुंदर लग रहे थे। तौ रेजतु, रेजतु माने विरेजतु, बहुत सुंदर लग रहे थे उस सभा में। पहले तो घूमे भ्रमण किए जहां तहां, भगवान कृपा करके सभी के साथ, चाहे वो दैत्य हो कुछ भी हो, जा करके घूम रहे थे और उनके शरीर की दिव्य सुगंध है सबके नाक में भर रही थी। सब देख रहे थे, जहां जिस मंच के पास कृष्ण आते थे तो लोग ऐसे देखने लगते थे, लगता था कि वे आंख से पी जाएंगे, बहुत तत्परता से देखने लगते थे। इसके बाद वे बैठे मंच पर, इसका भी अनुवाद गोस्वामी जी ने लिखा है कि राज समाज महा कोसल राज किशोर श्यामल सुंदर गौर तन विश्व विलोचन चोर। इन सभा में श्री कृष्ण घूम रहे हैं, पहले भ्रमण कर रहे हैं बलराम जी के साथ और इसके बाद बैठे। बैठने के लिए शायद उनके लिए स्पेशल लिखा गया होगा कि कृष्ण बलराम का आसन, क्योंकि कंस के जितने पहलवान थे अब इनसे लड़ने के लिए ही दो ही पहलवान थे वास्तव में। कृष्ण बलराम को लड़ाना था और मरवा देना था, यह अभिप्राय था। तो पहले भ्रमण किए तो श्री कृष्ण सामान्य वेश में थे, कोई पहलवान के वेश में नहीं थे, लेकिन दोनों भाई इससे बिल्कुल ऐसे घूम रहे थे जैसे कोई भय नहीं, कुछ नहीं, और सौंदर्य तो पूर्ण प्रकाशित था ही, तेज था। तौ रेजतु, ये दोनों बहुत सुंदर लग रहे थे। रंग गतौ महाभुजौ, विशाल बाहें थी अजानुलंबित, मतलब बाह का वर्णन करें महाभुजौ, कंस आदि को धूल में मिला देने के लिए हाथ काफी है। महाबाह, महाबाहु इसलिए कह रहे हैं कि वे भी पहलवानों को जब देखे तो ये लोग भी थोड़ा अपना दिखा रहे थे। चलते चलते महाभुजक, महान भुजक को आंदोलित कर रहे थे। और विचित्र वेशा भरण श्रगंबरो, विचित्र वस्त्र, विचित्र आभरण अलंकार आदि था, मालाएं, ये सब विचित्र थे। यदि कुबलय पीढ़ी के साथ युद्ध हुआ था लेकिन एक भी माला टूटा नहीं था, क्षति नहीं हुई थी। अपने सूंड में कृष्ण को पकड़ा भी था वो, लेकिन कृष्ण इतने चतुर हैं, चलाकी से माला वाला बचा लिए थे माला कपड़ा आदि सब ठीक बचा था। भगवान तो परम बुद्धिमान है, इतने भीषण हाथी के साथ युद्ध हुआ लेकिन कपड़ा बिल्कुल कुछ खराब नहीं हुआ, माला नहीं, और जो आभूषण था वो ठीक था। अनेक प्रकार से तो विचित्र वेशा भरण श्रगंबर जथा नटौ, जिस तरह से किसी रंगमंच पर दो नट नाचते हैं, अभिनय करते हैं, उत्तम वेश धारण है, नट का विशेषण है उत्तम वेश धारण, कृष्ण बलराम का विशेषण नहीं है, क्योंकि ऊपर विचित्र वेशा भरण सुगंबर कह दिया गया है। तो जैसे उत्तम वेश धारण किए हुए नट रंगमंच पर नाचते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं, उस तरह से श्री कृष्ण और बलराम बहुत अच्छे लग रहे थे, और मनःक्षिपन तो सबके मन को खींच रहे थे, सबके मन को खींच लिए, सबके मन को, हाँ पहलवानों के भी मन को उसी भाव रूप से खींच रहे थे, भयंकर दिखाई दे करके, कंस के भी मन को खींच रहे थे, आकर्षित कर रहे थे, काल के रूप में दिखाई पड़ करके, और स्त्रियों को कामदेव के रूप में, माता पिता माता दोनों पितरों को, नंद वसुदेव को शिशु के रूप में, इस तरह अपने अपने भाव के अनुसार ही मन जा रहा था कृष्ण में, लेकिन मनःक्षिपन तो सबका मन कृष्ण बलराम में था, यह अर्थ सबके मन को छिपंतव, छिपंतव का अर्थ छीन लिए थे, आकर्षित कर लिए, किसी का मन उस समय कृष्ण बलराम जब प्रवेश किए थे सभा में, किसी का मन अपने घर नहीं गया, कहीं भी न अपने देह में गया न घर में गया, पहलवानों का भी बस कृष्ण में था, भले उत्साह में था लड़ने के लिए, लेकिन कृष्ण में था, इसको मनःक्षिपंतव कहते, मन को खींच रहे, आकर्षित कर लिए, विश्व विलोचन चोर, भगवान ने विश्व के सबकी आंखों को चुरा लिए, चोर है मतलब खींच लिए, मनःक्षिपंतव प्रभया निरीक्षता, और निरीक्षता जो लोग निरीक्षण कर रहे थे कृष्ण पर, देख रहे थे अपने अपने भाव के अनुसार ही देख रहे थे, लेकिन कृष्ण के अंगों को देख रहे थे, अगर पहलवान देख रहे थे तो देख रहे थे कि कंधा कितना ऊंचा, पर्वत जैसा है, कितना गठीला शरीर है, ये निरीक्षण कर रहे थे, स्त्रियां निरीक्षण कर रही थी, श्री कृष्ण कितने सुंदर हैं, कितने सुंदर हैं, कितनी सुंदर आंख है, कितनी सुंदर भुजा है, गाल है, ये निरीक्षता निरीक्षण करने वालों के मन को छिपंतव आकर्षित कर रहे थे, प्रभाया अपनी प्रभा से, अपनी चमक दमक से सबके मन को अपने वश में किए थे। श्रीकृष्ण बलराम को देख करके वहां जुटी हुई प्रजा क्या सोच रही है, इसका वर्णन सुखदेव जी करते हैं, निरीक्षत उत्तम पुरुष उजना मंच स्थिता नागर राष्ट्र का नृप प्रहर्ष वेगोत्कलिता कलिते क्षण पपूर्ण तृप्ता नयन स्तदाननम। हे महाराज परीक्षित, देश की जनता, देश से आई हुई जनता और मथुरापुर की रहने वाली जनता, जो मंचस्थिता मंच पर अपने अपने आसनों पर बैठे हुए लोग थे, इन दोनों उत्तम पुरुष को देख करके, पुरुषोत्तम श्री कृष्ण और श्री बलराम को देख करके इतना आनंदित हुए कि प्रहर्ष वेगोत् कलिता कलिते क्षणानना, हर्ष से आनंद से उनकी आंखें खिल गई और मुख भी खिल गया, प्रसन्न हो गया, जैसे फूल खिल जाता है, कमल खिल जाता है, इस तरह से उनकी आंखें खिल गई प्रहर्ष के कारण। प्रहर्ष वेगेन उत्कलितानि उज्जृंभितानी इक्षणानी आननानी चेषण तथा भूता संत, मुख खिल गए और आंखें प्रस्तुत खिल गई, और तब आननम श्री कृष्ण के मुख को, श्री बलराम के मुख को नयन ही पपू हुए, सब नेत्र से पीने लगे। इसमें केवल चार लोगों का वर्णन है, यानी छह का, और वो लोग क्या नयन से पिएंगे जो दूसरे रूप में देख रहे थे, इसलिए नागर राष्ट्र का नृप, नगर और राष्ट्र के जो लोग आए थे उस विशाल सभा में, कृष्ण बलराम के विशेष करके श्री कृष्ण के आननम आनन को मुख को नयने पपु नेत्रों से पीने लगे। नेत्र से कैसे पिया जाएगा, इसका मतलब ऐसे देख रहे थे, इतना स्वाद मिल रहा था देखने में कि लगता था कि वे आंख रूपी प्याले से रूप पी रहे हो, आंख से पी रहे थे, बहुत आसक्ति से देख रहे थे। इसका अर्थ है आननम पपू श्री कृष्ण के मुखारविंद को पी रहे थे। कैसे, केन साधने न, नयनों से पी रहे थे। नयना ध्यान नहीं कहा जा रहा है, नयनों से, दो ही आंख है एक व्यक्ति को लेकिन इतना देख रहा है कृष्ण पर, इतना कि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं मानो हजार नेत्र से देख रहा है। नए नहीं, अथवा कई लोगों के नयन लगे हुए हैं, सबके नेत्र कृष्ण के मुख पर लगे हुए हैं, कृष्ण बलराम के मुख पर लगे हुए हैं। तो सुखदेव गोस्वामी इसको कहते हैं अपने नेत्रों से वो देख क्या रहे थे, लगता था कि कृष्ण के मुखारविंद को पी रहे हैं, सब पी रहे थे, पलक एकदम गिरना बंद हो गया, देख रहे थे निष्पलक। तो देखना सब दर्शन शब्द न देख करके पान शब्द दे रहे, पी रहे हैं, ये कुछ बात है ना, ये दर्शन दर्शन नहीं है, पिया जा रहा है। पप्पू पीने लगे कृष्ण के आनंद को, मुख को। पप्पू क्या इन शब्दों की व्याख्या की जाए, शब्द ऐसे सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि केवल ये अनुभव करने की चीज है। मथुरा के उस रंगशाला में जुटी हुई जनता भगवान की सुंदरता को किस तरह देख रही, उनके मुख को। वास्तव में कृष्ण का सारा अंग परम सुंदर है, लेकिन उसमें मुख तो और सुंदर है, और सुंदर है, और मुख में भी जो अधर है तो और सुंदर है, और उसमें भी जो मुस्कान है वो तो मधुरम 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 मधुरम, उसका तो कहना ही क्या। दुलमंगल ठाकुर जी कहते हैं मधुरस्य मधुरम मधुरम बपुरस्य विभो मधुरम मधुरम बदनम मधुरम मृदुगंधि मृदुस्मित नेत दहो मधुरम 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 मधुरम। इस विभू का, इस रास बिहारी का, श्री कृष्ण का बपु सारा शरीर मधुर है, मधुर है, दो बार बोलते हैं मधुरम मधुरम बपु अस्य विभो, इस विभू का बपु मधुरम मधुरम, और तीन बार मुख के लिए कह रहे हैं मधुरम मधुरम बपुरस्य विभो मधुरम मधुरम बदनम मधुरम, तीन बार। शरीर तो मधुर है ही, मधुर से भी मधुर है, और मुख तो मधुर से भी, मधुर से भी, उससे भी मधुर है, और मृदुगंधि मृदुस्मित में तो दहो, और श्रीकृष्ण की जो मुस्कान है उसमें से बहुत मधु की गंध निकल, बहुत सुगंध, सुंदर सुगंध निकलती है, और मृदु है तो वो तो मृदुगंध मृदुस्मित मेत दहो मधुरम 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 मधुरम, चार बार, चार बार मधुरम मधुरम कहने का मतलब है वो हब्द है, मधुर हब्द है। ते मथुरावासी और मथुरा के आसपास की जनता, उस समय नाम भिन्न भिन्न होगा, लेकिन सूरसेन प्रदेश से, आगरा से, अलीगढ़ से, हाथरस से, इन सब क्षेत्रों से आए हुए, आई हुई जनता, कई जिला से, अलीगढ़ से, और भगवान श्री कृष्ण को देखी है उस सभा में, देखी ही नहीं है, उनके मुख को पिया है, वो अच्छा से पिया है। इस प्रकार से जो भगवान है अभी मूर्खों के लिए वे निराकार ही रह गए, दूसरे लोग मुख कमल पिए, अब तक पीते रहेंगे, हम लोग भी पी रहे हैं, वास्तव में हम कान से पी रहे हैं, जीवा से पी रहे हैं, पीना ही है। भगवान के मुख का चिंतन होता है, वर्णन होता है, श्रवण होता है। श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित की सभा में सुखताल में समस्त ऋषियों के सामने बात खोल रहे हैं, कह रहे हैं, सब लोग पी रहे थे कृष्ण बलराम के मुख कमल को। पिबंत इव चक्षुर भ्या, पुनः आवृत्ति कर रहे हैं, जब नेत्र है पिबंत, पपू कह दिए नेत्र से पिए, तो नेत्र का दो बार वर्णन कर रहे हैं, पिबंत इव चक्षुर भ्या। हा महाराज परीक्षित, ऐसा ही लगता था, मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि वो दर्शन कर रहे थे, दोनों नेत्रों से पी रहे थे, पिबंत इव पी रहे थे, अरे ऐसे देख रहे थे कृष्ण को, नेत्र विस्फारण के द्वारा निकट से, जब मंच के निकट आते थे तो कुछ लोग उठ करके ऐसे देखते, ऐसे कृष्ण को, बलराम को, जहां निकट निकट आते थे तो बोले उठ करके दूसरे के मंच के पास चले जाते थे, निकट से कितनी सुंदर की आंखें हैं, कैसा सुंदर आधार है, कान है, गाल है, मुस्कान है, सब देखने लगते थे, उठ उठ करके आपस में बात भी करते थे, हमको देखने दो, देखने दो, देखने दो, निकट चले जाते थे। भगवान श्री कृष्ण और बलराम उनको सुख देने के लिए थोड़ा समय गति से चल रहे थे। इधर तो प्राकृत शरीर वाले और कोई गुण नहीं, लंपट कामी आदमी को देखने के लिए लोग जुटते हैं, धक्का पर धक्का, टिकट लो, ये करो वो करो, लेकिन भगवान इस संसार में, इस जगत में आए थे और उनको यहां की जनता देखती थी, कितना बड़ा भाग्य था उनका, मथुरा में जिनका जन्म हुआ था या मथुरा के निकट जो थे, जुटे हुए थे। एक दिन भगवान को इस भूमंडल पर मथुरा में डायरेक्ट देखा जा रहा था, उनकी सुंदरता को पिया जा रहा, तो सुंदरता पी रहे थे ये न कहकर के कहे मुख पी रहे थे, पपुस्तन मुख पंकजम, उनके मुख को पी रहे थे। पुनः कहते हैं पिबंत इव चक्षुर भ्या, वे ऐसे देख रहे थे कि लगता था कि पी रहे हैं, पिबंत इव चक्षुर भ्या, लिहंत इव जिह्वया, और वे जिह्वा से चाट रहे थे कृष्ण को, इव शब्द लगा रहे, वास्तव में नहीं चाट रहे थे, सबको इतना सुविधा नहीं थी कि जाकर के कृष्ण को चाटे, लेकिन चाटने का मतलब यह है कि मन में यही हो रहा था कब इसका चुंबन करेंगे, कब चुमेंगे इन दोनों को, तो उस समय जिह्वा की ऐसी दशा हो रही थी, ऐसे मन में आ रहा था कि पकड़ कर चूम लें, चूमे उसके हाथ को भी चूमे, उसके अधर को, गाल को, मस्तक को, तो लिहंग तई व जिह्वया, अवलेह जैसे, ऐसा लगता था कि जिह्वा से चाट लो, वो चाट रहे थे, सुखदेव गोस्वामी ये कहते हैं, लगता था कि जिह्वा से कृष्ण को चाटेंगे, अर्थात जिह्वा में और अपने अधर में कृष्ण को चूमने की स्फुरना हो रही थी। यदि वास्तव में वहां फ्री लोग होते और कम से नहीं बैठा होता और सब नहीं होते तो पकड़ करके चुम नहीं लगते, लिहम तय जिह्वया, और सारा अंग ही चरण कमल ऐसा था कि उसको देख करके उसकी सुगंध से ऐसा लगता था कि चरण को चुम ले, चरण को चाट ले, वो तो रसो वैस रसन हेवाय लब्धि आनंदी भवत, यही रस है श्री कृष्ण, यही पर ब्रह्म है परमात्मा है, इनको प्राप्त करके तब व्यक्ति आनंदी भवती, आनंदवान होता है, आनंद से युक्त होता है, रस है, रसो वही सह, श्री कृष्ण ही रस है दिव्य अप्राकृत। ऐसा लगता था कि वे श्री कृष्ण को आंख से पी रहे, पिबंत इव चक्षुर भ्या, लिहंत इव जिह्वया, जिघ्रंत इव नासा भ्या, और श्रीकृष्ण जब जब निकट निकट कहीं आते थे तो चरण कमल की सुगंध मिलती थी और समस्त श्री विग्रह की सुगंध, तो जिघ्रंत व नासाभ्यम, नाकों से बिल्कुल सूंघ रहे हैं। ऐसे सूंघते थे लगता था कि अब बिल्कुल निकट पकड़कर सूंघेंगे। जब श्री कृष्ण गुजरते थे श्री बलराम जी के साथ मंच के निकट कहीं, ऐसे आंख नाक करके सूंघने लगते थे, कितना सुगंध है, कितना अच्छा है। और सुलेक्षण तय बाहें ऐसी हो रही थी, चार चार भुजा, मथुरा के लोग तो वैसे ही चतुर्भुज रूप के होते हैं, अथवा दो बाहों में भी ऐसी स्फुरणा हो रही है कि सुलेक्षण तय बाहु व्याम, बाहों से भुजाओं में आलिंगन सा कर रहे थे। ऐसी बाहें ऐसे उत्पन्न उठ रही थी, लगता था कि पकड़ करके और अखबार में भर रहे, स्फुरणा हो। इसी को कहते हैं प्रेम, भगवान को भर अखबार लेने की इच्छा न हो, उनको सुनने की इच्छा न हो, उनको चुमने की इच्छा न हो, तो खाक भक्ति है क्या है। ये लालसा जिसमें नहीं हुई तो बेकार है। तो पहले तो श्री कृष्ण को इस तरह से समझना होगा कि परब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर परम सुंदर हैं, परम रसिक हैं, जिनको देखते ही भुजा में भरने की उमंग हो रही है, सूंघने की उमंग हो रही है, उनको चूमने का उमंग हो रहा है, उमंग हो रही है, और पीने का, देखने का नेत्रों से। इस तरह से मथुरा का वह रंग स्थल कृष्ण के आस्वादन से भरा हुआ था। धन्य थे, धन्य हैं वे लोग जो उस समय उस काल में उस सभा में बैठे थे, जो साक्षात कृष्ण को देख करके और इस तरह उनके इंद्रियों में स्फुलना हो रही। वास्तव में अपने इंद्रियों से श्री कृष्ण से संबंध करना यही भक्ति है। हृषिकेश केण हृषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, हृषिकेण हृषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। यहां इंद्रियों का वर्णन किया जा रहा है। वे इंद्रियातीत हैं, लेकिन जब इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं भक्त की, तो इन इंद्रियों से भगवान की सभी विशेषताओं को ग्रहण कर सकता है, उनको देख करके आलिंगन किया जा सकता है, उनका चुंबन किया जा सकता है, उनकी सुगंध को, चरण कमल के, हस्त कमल के गंध को लिया जा सकता है, उनको पिया जा सकता है आंखों से, जैसे पिया जाता है जीभ से, जीव से पीते हैं ना। लेकिन श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं आंख से ऐसे देख रहे थे, लगता है आंखों में, आंखों से पी रहे हैं, रूप रसामृत सौंदर्यामृत पी रहे थे। हम लोगों को भी उसी सभा में बैठे रहना चाहिए और श्री कृष्ण का इस तरह से आस्वादन करना चाहिए। अभी इसी सभा में ही रहना है 10 तारीख तक, इसी सभा में ही बैठना है। कृष्ण बलराम जो लीला कर रहे हैं, भी पहलवानी होगी, कंस का वध होगा, स्त्री पुरुष आपस में क्या क्या उद्गार करते हैं कृष्ण बलराम के विषय में, ये सब वर्णन आएगा। हरे कृष्ण जय श्री कृष्ण।